बिखरेगा जीवन तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। बाबा कई बार कहते, दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरा हर बेटा हर बच्चा राजा बच्चा है, क्योंकि बाबा ने एक एक बच्चे में इतने गुण और इतनी शक्तियां भरी हैं। ऐसे ही आज हमारे बीच प्रभु की श्रेष्ठ रचना, बाबा के समीप रतन, अनुभवी रतन, अनमोल रत्नों में से आदरणीय हमारी प्यारी गीता बहन जी, आपने ज्ञान तो सूरत से लिया, छोटी आयु में ही बाबा के बन गए। कमाल तो बाबा की, छोटे छोटे बच्चियों को अपना बना लेता, ज्ञान गंगाएं बना देता है। और जब से ज्ञान सरोवर बना, तब से आपने ज्ञान सरोवर में अपनी अद्भुत सेवाएं दी। मैं समझती हूँ आप में से भी बहुत से भाई बहने बहन जी को जानते होंगे, बहन जी की क्लासेस भी सुनी होंगी। जानते हैं सब गीता बहन जी को? हाँ, देखो कितने जानते हैं।
मधुबन में
आते रहते हैं, तो बहन जी की क्लासेस भी सुनते हैं। और अब विशाल सेवाएं, बेहद की सेवाएं देने के लिए गीता बहन जी आजकल नीचे शांतिवन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बिजनेस विंग में मधुबन हेडक्वार्टर्स की आप कोऑर्डिनेटर हैं, और उससे भी अधिक ये पालना, एक एक की करना, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। एक एक को जीवन बना देना, उसकी कमजोरियां निकाल के उस गुण भर देना, शक्ति भर देना, दिशा दे देना, ये सेवाएं आप दे रही हैं। तो आज हमारे बीच गीता बहन जी आ गए हैं, तो हम दिल से प्यार से आपका स्वागत करते हैं। आप हमें तपस्या द्वारा शक्तिशाली स्थिति, इस पर दिशा देंगी, गहराई देंगी। तो मैं समझती हूँ हम सब इतना ध्यान से सुनेंगे कि क्लास के बाद उठेंगे तो हम सब की स्थिति कैसी हो जाएगी, शक्तिशाली।
ओम शांति। आप सभी तपस्वियों का हार्दिक स्वागत है। मधुबन की भूमि में तपस्या के लक्ष्य से सभी आए हैं। अच्छा गोल्डन चांस लिया है। गीत भी बहुत सुंदर सुना। तपस्या ही जीवन की सुंदरता है। तपस्या से ही मधुरता आती है। सुना गीत, तपस्या क्या करनी है? हम सब यहाँ आए हैं विशेष तपस्या करने। तो हमें कौन सी तपस्या करनी? क्या तपस्या करनी? वो तो रिजल्ट आएगा ना, वो भी लक्ष्य है। तपस्या क्या करनी? बाबा ने हमें सिखाया है सिंपल बातें। हमारी पहली तपस्या है स्व में स्थित होना। बाबा रोज इसी के लिए हमें कहते, देह के भान से परे आत्म भान में रहना, ये है तपस्या। तपस्या माना समझ पूर्वक दृढ़ता के साथ किया हुआ अभ्यास पुरुषार्थ, उसको तपस्या कहते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई इस चीज को पाने के लिए मैंने बहुत तप किया, माना पूरी दृढ़ता से यथार्थ समझ के साथ लगे रहना उस पुरुषार्थ में, चाहे कितना भी कुछ सहन करना पड़े, फेस करना पड़े, पर चलित नहीं होना और पूरे इरादे से मेहनत करना, उसको तपस्या कहते। बाबा हमसे क्या चाहते हैं उस हिसाब से, तपस्या के हिसाब से बाबा हमसे क्या चाहते हैं, तो वो सबसे पहली तपस्या है देही अभिमानी बनना। निरंतर देहभान से न्यारे आत्मभान में रहना। ज्ञान है हमारे पास, अभ्यास हम करते हैं, पर जहां तक स्थिति बनाने की बात है तप चाहिए। माना एक संकल्प लेकर लग जाना उसमें। भक्ति में सही ज्ञान न होने के कारण उन्होंने हठ दमन की तपस्या, बेशक मूल बात को वो भी समझ गए, इंद्रियों के विषयी आकर्षण से परे शुद्ध आत्म भाव में रहना वो समझ गए, वो भी उसी को पाने के लिए देह दमन की तपस्या करते। वो एक एक इंद्रिय के उसका दमन करते। आंख बंद कर देना, देखे तो मन चलायमान हो ना, तो उन्होंने द्वार बंद कर दिए कि आंख बंद कर देना। सूरदास ने तो आंखें फोड़ दी, उनको सही मार्ग पता नहीं था ना, पर लगन उनकी देखो कि मन चलायमान न हो, उसके लिए दुनिया में कौन होगा जो आंख फोड़ेगा। लगन क्या चीज है, वो समझ गए कि चंचलता से मुक्त होना, इंद्रिय आकर्षणों से पर जाना, इंद्रियों के विषय रस और स्वाद ही चलायमान करते हैं, ये वो समझते हैं भक्ति में। मुख बंद करते हैं, मौन रहते हैं, एक ही आसन लगाकर बैठे रहते हैं, उपवास करते हैं। भक्ति की तपस्या ये है, हर धर्म में तपस्या का महत्व है। हिंदू चातुर्मास करते हैं, जैनी पर्युषण करते हैं, मुस्लिम रोजा रखते हैं, इवन क्रिश्चियनिटी में भी ईस्टर के दिनों में 15 दिन आते हैं जब वो भी उपवास वगैरह करते हैं। तपस्या का महत्व रखा ही गया है। हमारी आधी तपस्या तो ब्राह्मण बनने से ही हो जाती, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं सबसे बड़ा तप है, शुद्ध अन्न खाते हैं अपने आप संयम आता है भोजन में, दूसरों के घर नहीं खाना, बाहर नहीं खाना, अपने आप कंट्रोल आता है ना, रोज सुबह शाम क्लास में योग में बैठते, पूरी दिनचर्या में सुबह और शाम का टाइम ही तो प्रकृति के आकर्षण का होता है। आप देखो मॉर्निंग ही बेस्ट होता है, इवनिंग बेस्ट होता है, प्रकृति की सुंदरता उस समय कितनी अच्छी होती। बाबा ने उस समय क्लास के अंदर बिठा दिया कि अंदर बैठो, हमारी दिनचर्या ही फिक्स कर दी कि सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8 ज्ञान और योग के पीरियड है। प्रकृति का सौंदर्य देखना अलग है, परमात्मा को प्यार से याद करना अलग है। भले आप पहाड़ों पर बैठ के बाबा को याद करो, पर वो एकाग्रता थोड़ी होती है जो एक बाबा के कमरे में बैठ के आप करते। तो ब्राह्मण बनने से आधी तपस्या तो हमारी अपने आप हो जाती, पर पूरा ब्राह्मण जीवन भी हम तपस्या करते हैं। वो कौन सी तपस्या? ज्ञानी और पवित्र बनने के बाद कौन सी तपस्या? वो तो तप करते हैं भगवान को पाने के लिए, जितेंद्रिय बनने के लिए। हमें भगवान मिल चुका है, सत्य मिल चुका है, हम ज्ञानी तो आत्मा, पवित्र आत्मा बन चुके हैं। हमें अब कौन सा तप करना? क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है ना? महातपस्वी बनना, संपूर्ण बनना, फरिश्ता बनना, हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, संपूर्ण निर्विकारी बनना। और हमें हठ दमन से तप नहीं, हमें तो नेचुरल योगी बनना। देवताएं क्या है? नेचुरल योगी है, नेचुरल आत्मभिमानी, नेचुरल दिव्य है। वो स्टेज लानी है ना हमें, देवता बनना माना, पता है ना प्रैक्टिकली क्या करना है। देवताई स्थिति की महिमा क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न, ये हर एक जानते हैं ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर एक को क्लैरिटी है ना देवता बनना माने क्या बनना है। कोई अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहनना, सोने के महल में रहना, वो थोड़ी है। देवता बनना माना हम सबको स्पष्ट है कि हमें क्या बनना है। और ऐसी नेचुरल स्टेज संगम के तपस्या से, योग से मिलती। तो सबसे है बाबा ने कहा कि देह भान से वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य सिर्फ खाने पीने पहनने घूमने का नहीं, वो तो उसकी स्थूल शुरुआत है। कि वैराग्य माना हम फैशन नहीं करेंगे, रस और स्वाद में नहीं जाएंगे, सात्विक शुद्ध भोजन खाएंगे, सिर्फ इतना नहीं, वो तो हमने किया है। बाबा ने कहा देह भान से वैराग्य आना चाहिए कि क्यों मैं घड़ी घड़ी देह भान में आ जाता, जबकि स्वयं बाबा, स्वयं परमात्मा बार बार हमें कहते हैं हम क्यों देह भान में आकर्षित हो जाते। तो हमारा सबसे बड़ा तप है कि निरंतर देह भान से न्यारा रहना। अपनी आत्माभिमानी स्थिति में रहना, और आत्माभिमानी स्थिति केवल स्मृति नहीं, एक है कि हम स्मृति में रहते हैं ना, अभ्यास करते। आत्माभिमानी स्थिति माना आत्मा की ओरिजिनल शुद्ध सत्य पवित्र शांत, वो जो हमारी ओरिजिनालिटी, उस रूहानी स्थिति में रहना, उस स्थिति से कर्म करना, माना हमें महसूस हो कि जितनी बार हम बॉडी कॉन्शियस बनते हैं या वर्क कॉन्शियस बनते हैं, माना हमारा तप खंडित हो जाता है। देह भान से न्यारी आत्माभिमानी स्थिति, बाबा कहते हैं ना, उससे ही आप न्यारे और प्यारे रूहानी बनेंगे। अटेंशन चाहिए, ज्ञान भी है, अभ्यास भी है थोड़ा बहुत, पर निरंतर और नेचुरल बनने के लिए अंदर से ये हमें लगन हो कि मुझे इससे अलग रहना है। जैसे वो दिखाते हैं कि रावण की लंका में, लंका के अशोक वाटिका बोलते हैं ना, उसमें राक्षसों के बीच सीता एक की याद में थी, माना कितनी बड़ी शक्ति न्यारा रहने की। रावण का सबसे बड़ा स्वरूप शरीर है ना, तमोप्रधान तत्वों का बना हुआ, देह भान में आने से ही दुनिया के आकर्षण में हम आते हैं। इसलिए भक्ति में जिनको भी योगी तपस्वी बनना था उन्होंने दुनिया छोड़ी। बाबा ने हमें सहज तरीका बताया कि दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, देहभान से न्यारा होने की आवश्यकता। देहभान चंचलता का कारण है, देहभान सभी विकारी वृत्तियों का मूल कारण है। इसलिए बाबा ने सबसे पहली तपस्या हमें यही सिखाई कि देह के भान से न्यारे रहो, और उसका प्रैक्टिकल अभ्यास, देह भान से न्यारे कैसे रहेंगे, अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप में स्थित रहेंगे, उसी स्मृति दृष्टि चिंतन में रहेंगे। पहला तप हमारा ये है, तपस्या की शुरुआत आत्माभिमानी स्थिति से होती है। आत्माभिमानी नहीं तो तप की बात ही नहीं है ना। बार बार खुद को डिटैच करते रहो। इससे आज तक उसी के पीछे हम मेहनत कर रहे हैं ना। पहला पाठ पढ़ाई की शुरुआत उस पहले पाठ को ही पक्का करने का रोज अभ्यास करते हैं। ये साधना कच्ची रह गई माना, विकारी पुराने संस्कार निर्मूल नहीं होंगे, वो बार बार उठते रहते। कहते हैं ना भाई बहने कि 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, अभी तक पुराना संस्कार जाता नहीं। कारण ये, आत्माभिमानी स्थिति की साधना कच्ची है। आप देह भान से डिटैच रहेंगे, मन में विकार के तूफान उठेंगे तो भी कर्म में नहीं आ सकेगा। डिटैच रहने से सेफ्टी हो जाती। इसलिए बाबा ने कहा है आत्माभिमानी स्थिति सेफ्टी की स्थिति। विकारी वाइब्रेशंस असर नहीं करेंगे। आज भी बाबा ने कहा भक्ति में मानते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आया था ना मुरली में, वो कहते हैं मन पतित होता है, आत्मा तो निर्लेप है, इसलिए वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने सत्य बताया कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति। आप आत्माभिमानी स्थिति में होंगे तो कोई नेगेटिव प्रभाव आएगा नहीं। और आज बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने मुरली में कही कि जब तक क्रिमिनल आई होती रहती है माना पवित्र नहीं है, माना अंदर विकार की गंदगी है, संस्कार के रूप में, आदत के रूप में। माना मैं आत्मा पूर्ण शुद्ध नहीं बनी हूं। तपस्या के दो लक्ष्य होते हैं, एक पूर्ण शुद्धि, तप करते हैं शुद्धि के लिए, और दूसरा शक्ति के लिए, शक्तिशाली स्थिति, उसके लिए तप चाहिए। तो शुद्धि और शक्ति, ये दो चीज चाहिए, उसके लिए तपस्या हम करते हैं। हमारी दूसरी तपस्या है एक बाबा दूसरा न कोई। सिवाय उस एक के मुझे और किसी की याद खींचे नहीं। एक है पार्ट प्ले करने के हिसाब से व्यक्ति को याद करना, सेवा देना, कारोबार करना, वो अलग चीज, पर याद खींचे वो नहीं होना चाहिए। कारोबार के हिसाब से तो हम जरूरी आत्माओं को याद करते हैं, सेवा कारोबार करते हैं, पर बात आई, कोई परिस्थिति आई, कोई आवश्यकता हुई और मुझे कोई व्यक्ति खींचे, याद आवे, वो नहीं। मेरे सर्व संबंध एक बाबा से, मेरी सर्व प्राप्ति बाबा से। माना कुछ भी जीवन में आता है, मुझे पहली याद बाबा की है। ये नहीं कि बुद्धि भटके, खोजे कौन मदद करेगा, ये होता तो मदद करता, ये, और जब कहीं से मदद न मिले तब बाबा को कहना कि बाबा आप ही मेरे हैं, तो वो तपस्या नहीं है। माना बुद्धि पहले उसमें जाए कि बाबा मेरे साथ है। ठीक है, कोई बात को ठीक करने के लिए प्रैक्टिकल प्रयास हम करें, पर मेरा अल्टीमेट आधार बाबा है। बाबा भी और ये भी वो नहीं चलेगा। बाबा से तो मुझे बहुत प्यार है, पर मेरे को ये भी प्यारा है तो नहीं। योगी कहा ही उसको जाता है जिसका योग भगवान से जुड़ा हो, उसको ही योगी कहते। वैसे तो बुद्धि कहीं ना कहीं जुड़ी है ना, पर उसको थोड़ी योगी कहते। हरेक का बुद्धि योग किसी न किसी से कहीं ना कहीं तो जुड़ा ही है ना, पर हम उसको योगी नहीं कहते। एक से जुड़ना उसे योगी कह रहे। माना ये जिगरी विश्वास, निश्चय, लगन, कोई भी परिस्थिति में उसके अलावा और कहीं बुद्धि न जाए, तप ये है। कहते ना भाई, भक्ति में माताओं के तप गाए हुए है ना, पतिव्रता नारी, सती स्त्री, कहते ना एक के सिवाय और किसी में बुद्धि न जाए। उन्होंने देह संबंध में ले लिए, यहां एक बाबा के सिवाय हमारी नजर और हमारी बुद्धि कहीं डूबे नहीं, वो है सत, वो है तप। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, वो है बाल ब्रह्मचारी जो संकल्प से भी कोई देहधारी में फंसते नहीं, बुद्धि जाते नहीं। उसके लिए मेहनत, खुद को समझाना है बार बार। सबसे पहले खुद की लगन, खुद की लगन के एक बाबा में मेरी बुद्धि रहे। मुझे क्यों कोई देहधारी याद आए, क्यों मुझे आकर्षण हो। आज भी बाबा ने ऐसा ही एक प्रश्न पूछा ना कि आज या कल क्यों नहीं तुम पवित्र बन सकते हो। कल की मुरली में था, ये एक जन्म इतनी ऊंची प्राप्ति है, ये अनन्य भाव, ये नौधा समर्पण बाबा के लिए चाहिए। वो नौधा भक्ति करते हैं, ये हमारा नौधा योग, नौधा समर्पण चाहिए। अनन्य भाव, एक ही और कोई नहीं। वो तप है। बेशक हमारे में इतनी शक्ति है कि हम कर्मेंद्रियों से चलित नहीं होते हैं, पर मन से भी हम भ्रष्ट ना हो, विचलित ना हो, पूरे बाबा के वफादार रहे, उसके लिए खुद के पीछे हमें मेहनत करनी। तो सबसे पहले कैसी लगन है, मैं चाहती हूं कैसा आधा अधूरा पवित्र योगी जीवन, तो वैसे ही अच्छा ही है हमारा। तो हम पवित्र हैं, योगी हैं, सेवाधारी हैं, सहयोगी हैं, हमारा जीवन तो अच्छा ही है ना। पर इतना बाबा समय की मार्जिन दे रहा है, हम सोचते हैं क्यों बाबा संगम युग लंबा कर रहा है। पर हमारे लिए कोई बाबा लंबा नहीं कर रहा है, उन आत्माओं के लिए कर रहा है जो अभी तक पहुंची नहीं है, जिनका अंत में पहुंचने का रोल है। पर उन नयों के निमित्त हमें तो टाइम की मार्जिन मिल रही है। तो हमारा ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए हमारी तपस्या में ये रिफाइननेस चाहिए। फरिश्ता बनना मैंने क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो ब्राह्मण जीवन में क्या सुधार लाना है। भाई शूद्र से ब्राह्मण बनना है तो हरेक को पता है ना क्या छोड़ना है, क्या धारण करना है। अब हम तो आगे के स्टैंडर्ड में आ गए कि अब ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो मेरे वर्तमान ब्राह्मण जीवन में क्या चेंज लाना है, कहां सुधार करना है, ब्राह्मण जीवन को और रिफाइन क्वालिटी बनाना है। निश्चय में, पढ़ाई में, तपस्या में, त्याग में, वैराग्य में, सेवा में, सहयोग में, आपसी संगठन हमारा, हमें उसमें क्या रिफाइननेस लाने, इसलिए अपने आप से बात, क्यों सिवाय बाबा और मुझे याद आता है, क्यों कोई खींचता है मुझे, देहभान में आने से, देहधारी के आकर्षण में आने से ही तो उतरती कला हुई। अब जब टॉप पर जाना है, आज कहा ना बाबा ने घर जाना है, तो ये लगन कि तब एकाग्रता आती, एकाग्रता ऐसे नहीं आएगी, जब अनन्य भाव होगा तो एकाग्रता आ जाएगी तुरंत। हमारी कोई हठ दमन वाली एकाग्रता नहीं है ना, एक बाबा, सिर्फ योग में नहीं, योग में एक बाबा सिर्फ नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में एक बाबा। योग का प्रभाव कर्म तक पहुंचना चाहिए ना, प्रैक्टिकल में एक बाबा। वहां तो हम योग नहीं लगता है तो हम कारण बताते हैं, आवाज हो रहा था, चारों ओर काम चल रहा था, लोग आना जाना कर रहे थे, हम कारण बताते हैं। वास्तव में यहाँ बिल्कुल शांति है, पवित्र वातावरण है, अमृत वेले आप देखो बिल्कुल शांति और स्वच्छ वातावरण, उस समय क्यों योग नहीं लगता है? किसको दोष देंगे? तो ये महसूस होता है ना, मधुबन में आके साइलेंस में रह के तपस्या करते हैं तो समझ में आता है कि लगन चाहिए। हम अभी बात कर रहे थे कि भक्ति में भगवान नहीं मिला था पर भावना इतनी थी, जो प्राप्ति कर लेते थे, अनुभव करते थे, अब भगवान मिल चुका है, अब भावना कितनी, तपस्या में एकाग्रता, योग में एकाग्रता, लगन में मगन होने का आधार बाबा में पूर्ण भावना, श्रद्धा, विश्वास, प्यार, समर्पण। अब वो चाहिए, पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, भक्ति में क्या क्या नहीं किया, पाने के बाद समान बनने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए, अब उसके लिए लगन। बाबा कहते हैं साक्षात्कार चलो हो गया फिर क्या, वो तो समझते हैं हमें भक्ति का फल मिल गया, साक्षात्कार हुआ, हमें तो साक्षात मिल गए, उनको तो सिर्फ साक्षात्कार, भाई मैं आपको लड्डू दिखा दूं कि देखो ये लड्डू है, ठीक है बस चलेगा नहीं, प्रैक्टिकल मिले तो लगेगा ना प्राप्ति, सिर्फ मैं दिखा दूं कि भी देख लो लड्डू है, इससे थोड़ी पेट भरेगा। भक्ति वो है साक्षात्कार, हमें तो साक्षात बाबा मिला है, अब उनमें मगन होने के लिए हमारी तपस्या है पुरुषार्थ। रोज हम करते हैं ना, क्लास करते हैं, योग करते हैं, सेवा करते हैं, वो किस लिए है ना, उनके जैसा बनना है ना, उनसे पूरी प्राप्ति करनी है, वर्षा लेना है। वो देखो क्या है, तीसरी तपस्या है कि कर्मेंद्रिय से कोई पाप ना हो, पूरे ब्राह्मण जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी ये संयम रहे, दृढ़ता रहे, कुछ भी हो कर्मेंद्रिय से पाप नहीं कर, ये दृढ़ता रखना तप है, वो शक्ति है। कुछ भी हो मुझे चलित नहीं होना है। बाबा ने कहा एक बार गिरा माना कि कमाई चक्र, फिर वो इतना ऊंच नहीं उठ सकेगा, इसलिए कंट्रोल कि कर्मेंद्रिय से कोई भूल नहीं होनी चाहिए। चलित तो हो गए फिर तो पश्चाताप, फिर पश्चाताप ही रहता है, बाबा भी याद आएगा, पाप भी याद आएगा, दाग लग गया ना रजिस्टर, इसलिए पहले संयम। हमारा बाबा से प्रॉमिस है कि बाबा हम कर्मेंद्रिय से भूल नहीं करेंगे। साकार मुरली में आता है ना कि बच्चे मन में कितना भी तूफान आवे पर कर्मेंद्रिय से पाप नहीं कर। अब तो समय बहुत आगे बढ़ चुका है, अब तो बाबा कहते हैं मनसा में भी तूफान नहीं आना चाहिए। अब हमारा पुरुषार्थ वो है, वर्तमान समय की तपस्या है कि मन में भी विकार न आए, ये युद्ध मन में, मन का जो युद्ध है वो खत्म हो जाए। अब का तप है जो कर्मेंद्रिय से नहीं करना है वो मन से भी मुझे नहीं करना है। मान लो मुझे किसी को भी हाथ से, कहते हैं भी हाथ नहीं उठाओ, हाथ से किसी को गुस्सा नहीं करना है, मारना नहीं, पीटना नहीं, हम मन से कुड़ते रहते, मन आने उसको ऐसा मन में ही गुस्सा करते रहते, वो कंट्रोल तो आ गया क्योंकि ब्राह्मण बने हैं, रोज ज्ञान योग कर रहे हैं, तो वो संयम है कि कर्मेंद्रिय से भूल नहीं करनी है, पाप नहीं करना है। पर अभी जो समय है, बाबा के द्वारा मिला हुआ जो होमवर्क है वो तो ये है कि जो कर्मेंद्रिय से नहीं करना वो मन से भी नहीं करना। और वो तभी हो सकेगा जब मैं अवेयर हूं, जागृत हूं, मेरी लगन है। क्योंकि मन के पाप तो किसको भी पता नहीं है ना, सिर्फ मुझे पता है। कर्मेंद्रियों से तो इसलिए भी नहीं होगा कि ब्राह्मण परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, है ना, तो वो डर के मारे भी धारणा रहती, पर नहीं, रियल वो है कि मन में भी नहीं, मन भी शुद्ध। और जब भी मन से कुछ होता है गड़बड़, उसी समय अपने आप से बैठो, महसूस करना है क्यों ये हो रहा है, मुझे शोभा नहीं देता है, सब समझते हैं कि मैं योगी हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं, सफेद वस्त्रधारी हूं, पवित्र हूं, और मन क्या है, अब ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी क्यों रखना है। जब खुद लगेंगे तो हो जाएगा। और चौथी बात, हमारी तपस्या का प्रैक्टिकल व्यावहारिक स्वरूप, क्योंकि हम एकांकी तपस्वी नहीं है, वो तो अकेले अकेले जंगल में गुफा में जाके तप करते हैं ना, हमारी तपस्या प्रवृत्ति मार्ग की है। बाबा कहते हैं ना, राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है, वो हठ योग निवृत्ति मार्ग का, कहते हैं ना बाबा। तो हमारा योग का व्यावहारिक प्रैक्टिकल स्वरूप कि यज्ञ के विधि विधान अनुसार जीवन जीना, इस अलौकिक परिवार में भी ऐसे ही चलना और लौकिक में भी। अब लौकिक में तो हम काफी न्यारे हो चुके हैं, है ना? हम नहीं होते हैं तो भी लोग हमें कर देते हैं कि इनका सब अलग है, अब वो हमें निकाल देते है ना, हम ऐसे ही बाहर हो गए। लोगों को पता है इनका आहार विहार नियम संयम दिनचर्या, इनकी बातें मत सब अलग है, इसलिए हम भले उसमें ही रहते हैं पर वो कहते हैं भाई ये ऐसा नहीं करेंगे इसलिए इनसे बात नहीं कर। इस बारे में तो नेचुरली हम लौकिक में रहते हैं पर हम नेचुरली काफी दूर है, अलग हो गए। अब इस अलौकिक परिवार में प्रैक्टिकल योगी माना मुझे शिव बाबा से मेरा योग है, इसका प्रैक्टिकल प्रमाण है कि शिव बाबा के रचे हुए यज्ञ के नियम मर्यादा दिनचर्या विधि विधान अनुसार चलना, ये तप है। कई नंबर वार पुरुषार्थी आत्माएं मनमत की बातें हमें कहेंगे, कई मान शान अभिमान की बातें हमारे में आएंगी, पर प्रैक्टिकल संयम इतना हो कि मुझे कुछ भी हो जाए, स्वभाव संस्कार ना मिले, आपस में भी कई बार नहीं मिलते हैं, निमित्त आत्माओं से भी नहीं मिलते हैं, पर फिर भी मुझे यज्ञ के विधि विधान के बाहर जाकर नहीं चलना है। ये प्रैक्टिकल में भगवान के प्रति हमारी वफादारी है। कई बार होता है ना कि भी आपस में मेरी आपकी नहीं बनती है, पर कर्म फिर हम शिव बाबा की आज्ञा के विरुद्ध करने लगते हैं, तो की हुई सेवा हमारी धारणा तप सब खत्म होने लगता है। बाबा खातिर यज्ञ खातिर विश्व कल्याण खातिर भी हमें मनमत खत्म करके श्रीमत पर ही सब कुछ करना है, सेवा भी श्रीमत अनुसार, चलन भी श्रीमत अनुसार, हर समस्या का समाधान भी श्रीमत वाला हमें चाहिए। इतना कंट्रोल रखना है अपने आप पर। भले मन छोड़ना पड़े, कुछ त्याग करना पड़े, बाबा कहते हैं ना झुकना पड़े, कोई बात नहीं, पर यज्ञ को नुकसान करने वाली कोई चलन मुझे नहीं चलना। बल मैं सत्य हूं, राइट हूं, तो भी होता है ना कई बार, कोई गलत को सबक सिखाने के लिए हम गलत रास्ता लेते, नहीं, हमें श्रीमत पर ही सब कुछ चलना है। तो स्थिति भी बाप समान बनती जाएगी और यज्ञ भी निर्विघ्न बनता जाएगा जो बाबा की इच्छा है, है ना? बाबा ने कौन सा होमवर्क दिया है? यही दिया है कि आप बाप समान बनो और आपका संगठन निर्विघ्न बने। यही तो दो चीज बाबा चाहते। इसके लिए अपने को दृढ़ रखना है, संग दोष में नहीं आना है, मनमत के प्रभाव में नहीं आना है, खुद की इच्छाओं के प्रभाव में नहीं आना है। नहीं, हम बाबा को दिल से समर्पण है। समर्पण माना समझते हो ना, कोई यहाँ आके रहना समर्पण की बात नहीं है, पर हर हाल में श्रीमत को वफादार रहना समर्पण है। उस हिसाब से घर में रहते भी आप समर्पण हो सकते हैं, और अगर मैं अटेंशन ना रखूं तो यज्ञ में रहते भी मैं बेवफा हो सकती हूं। बहुत सूक्ष्मता से हमें खुद को चेक करना है। सिर्फ मोटा बाह्य रूप नहीं, मेरा आंतरिक शुद्ध हूं, मेरा अपना अंदर का सूक्ष्म जगत, विचार, वृत्ति, स्मृति, मन के भाव, भावनाएं, इच्छाएं, वाइब्रेशंस, इन सब को मुझे शुद्ध करना है। तो नेचुरली इंटेंस तपस्या छे, जो इंटेंस पुरुषार्थ हम करते हैं पूरे ध्येय के साथ, वो तप कहलाता। तब हमारी स्थिति भी शक्तिशाली, तेज ओज वाली, हमारी दृष्टि में शक्ति आएगी, हम लोगों की कामनाएं पूरी कर सकेंगे। और भी गहराई से आप सोचना, पांच मिनट अभ्यास करते हैं। खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल साइलेंस, हलचल नहीं ज्यादा। पहला अभ्यास देह भान से न्यारा होना। स्वयं के अलौकिक दिव्य ज्योति स्वरूप में स्थित रहना। शरीर भौतिक है, लौकिक है, मैं स्वयं आत्मा अलौकिक अभौतिक दिव्य ज्योति बिंदु हूं। राइट साइड घूमे घूम जाए राइट साइड मेरा दूसरा अभ्यास एक बाबा सर्वोच्च सदा पावन ऑलमाइटी सागर भंडार दाता उससे ही मेरा योग अब आत्माओं रूपी नदी नालों में भटकना नहीं है सागर बाप में समा जाना है राइट साइड घूम जाए तीसरा अभ्यास स्वकर्म में ट्रस्टी मालिक बाबा को वफादार आज्ञाकारी खुद श्रीमत पर डबल लाइन राइट साइड घूम जाए चौथा अभ्यास वतनवासी बन जाना शरीर से इस दुनिया में मन और बुद्धि से अव्यक्त वतन में या मूल वतन में
सदा ऊपर रहना। सूक्ष्म मन की लगन बाबा से, घर से, अनादि शुद्ध सत्य स्वरूप से। राइट साइड घूम जाए, पांचवा अभ्यास मास्टर दाता बनना। प्यारे बाप दादा ने मुझे भरपूर कर दिया है, बाबा ने सब कुछ दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब मुझे भी मास्टर दाता बनना है। बैठ जाए, ओम शांति।
गीता में वर्णित है ज्ञान का अर्थ बताए गए राजों को समझना, वही ज्ञानी। लेकिन योगी का अर्थ जो आज बहन जी ने बताया, समर्पणमय था। योगी सदा समर्पित है, प्रभु की श्रीमत के आगे समर्पित है, जो कहा जाए जैसा कहा जाए, उसके आगे उसका कोई संकल्प भी नहीं है। तो हमने अभी अभी यही गहरी बातें सुनी, ये मात्र सुनने के लिए नहीं लेकिन समाने के लिए है, अभ्यास करने के लिए है। हम दीदी को भी विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो हमें दिशा दी है, कैसे तपस्या के द्वारा हम अपनी स्थिति बनाई, अवश्य इस पर अभ्यास करेंगे। करेंगे ना, करेंगे ना। तो गीता दीदी जी का बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया।